अब अगली दुआ क्या है? घबराहट के वक्त की दुआएं। क्या कभी कभी ऐसा होता है कि बिला वजह दिल घबराता है? और बस लोग इसको कहते हैं धड़का, धड़का लगा हुआ है, पता नहीं क्या है, कुछ दिन से ऐसे लग रहा है कि कुछ होने वाला है। आपने यकीनन अपने बड़े लोगों से ये बातें सुनी होंगी। तो ऐसे वक्त में क्या किया जाए? आप सोचेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, नहीं। घबराहट के वक्त क्या कहा जाए? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कितना प्यारा ये जुमला है, कितना प्यारा ये कलम है। और यहाँ ये बात कि घबराहट में कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, तो ये सही बुखारी की रिवायत से आप देख सकते हैं, 3346। लेकिन पीछे भी आपने इसको बहुत दफ़ा पढ़ा है कि वाकई ला इलाहा इल्लल्लाह में अमान है। ऐसे ही लगता है, एक होता है ना पढ़े वजीफ़ा आपके, कितनी दफ़ा तस्बीह पे पढ़ूँ, उंगलियों पे पढ़ूँ, हाथ में पानी का प्याला लूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप कभी किसी अरब दोस्त को करीब से देखे ना, अगर उठना बैठना हो, उठते बैठते उनकी ज़ुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चा कुछ काम करे, ख़राब किया, तोड़ दिया, आटा गिरा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो इस तरीके से फील कराती है, यानी ये घबराहट है एक किस्म की। और यकीन कीजिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में दिलों को सुकून है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नल कुलूब। तो आप भी ज़रा अपनी को घबराहट और परेशानी याद कर कर इसको इस शऊर के साथ मांगे। आती तो है ये आपको दुआ, मांगना भी आता है, यानी कह लीजिए इसके अल्फाज आते हैं, लेकिन इस वक्त इस फीलिंग के साथ पढ़ें कि जब कभी घबराहट हो तो आपको याद आ जाए कि मैंने ये जुमला पढ़ा था। जी मिलके मांगिए।
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
अल्लाह ताला तो एक बार भी इस कलमे के पढ़ने की इतनी बरकतें देता है। आप देखिए, शऊर से, सोच से, इरादे से पढ़ लें, पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और इंसान इस्लाम के कलबे में दाखिल हो जाता है। अल्लाह हमें इस कलमे की कदर की तौफीक दे। फिर इसके बाद है गुस्से के वक्त की दुआ। कभी आया आपको गुस्सा? आप कहेंगे नहीं मुझे तो नहीं, औरों को आता है मेरे घर में, तो भाई यही बड़ा करें। जब आपको या किसी और को गुस्सा आए, क्या? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ या आता हूँ शैतान मरदूत से। आप देखिए कि हम तो औज़ु बिल्ला किसी और ही चीज़ पे पढ़ते हैं, लेकिन बुखारी की ये रिवायत है 6115 नंबर की। इससे क्या पता चलता है कि गुस्सा आग है और शैतान के भड़काने से आता है। जब आप अल्लाह की पनाह में आएंगे, अल्लाह का नाम सुन के शैतान भागेगा और फिर आपका गुस्सा भी दूर होगा। तो बच्चे को आए, बड़े को आए, खामोशी से, चुपके से ज़ेरे लब पढ़ दें औज़ु बिल्लाह। अपने ऊपर कभी गुस्से का गलबा आए, आपको अपने बच्चों पे गुस्सा बढ़ाते हैं ना माशाल्लाह, कभी औरों पे भी आता है, वो आप खुद ही देख लें। अमूमन हमें दूर वालों पे बड़ा प्यार आता है, क्या हाल है, कैसे हैं, क्या हैं ठीक, और करीब वालों को हर वक्त बस अपने पास होने की सजा देते रहते हैं। तो इस शऊर के साथ मांगिए, ज़रा ऐसे मांगिएगा कि शैतान भाग जाए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
अब आप सोचिए ज़रा सा कि शैतान कहीं खड़ा है और वो आपकी कुछ चीज़ों को गलत कर रहा है, ख़राब कर रहा है, आपका नुकसान कर रहा है, और उसका दिल है कि आपको गुस्सा आए, और आप अपने ऊपर ज़ब्त करते हुए इसको 3 दफ़ा मांगिए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
कुछ दूर हो गया गुस्सा, शैतान भागा, कुछ महसूस हुआ? आप देखिए बात बड़े प्यार से कहते हैं औसु बिल्ला, तो ऐसे फील होता है कि जैसे शैतान जो है वो घूम घाम के उधर से इधर से होके वापस आ जाएगा। तो बहरहाल थोड़ी सी शैतान के लफ्ज़ को पढ़ते वक्त ना थोड़ी सी शिद्दत होनी चाहिए, यानी शैतान को भी बात बड़े प्यार से कहते हैं बड़ा शैतान है। अपने बच्चे को लोग शैतान कहते हैं, कभी आप सोच सकते हैं इस बारे में? अगर आपको शैतान की असल पता हो, शैतान क्या है कैसे है, तो क्या वाकई आप अपने बच्चे को कभी शैतान कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। हम और नाम नहीं लेते जो हमें बुरे लगते हैं, लेकिन लफ्ज़ शैतान कितना कॉमन है हमारे बच्चों में। तो याद रखिए, ना तो शरारती कहिए ना शैतान कहे, क्योंकि ये एक्सट्रीम के सीगे है ना। शरारती शरीर के है, फाइल का वजन बहुत शर फैलाने वाला, और इसी तरह शैतान पोलान का वजन है, बहुत ही ज़्यादा शर। दोनों में सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसलिए इसको पढ़ते वक्त आपने ज़रा सा मुख्तात होना है। फिर मांग लीजिए एक बार।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
फिर इसके बाद है सरकश शैतानों के मकरो फरेब से बचने की दुआ, यानी बहुत सारे शैतीन ऐसे होते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, हम उनकी चालों से बच नहीं सकते अगर अल्लाह की मदद ना हो। कदरे तवील दुआ है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामात अत्तामातिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुम वला फाजिरुम मिन शर्री मा खलका वज़रअ वबरअ वमिन शर्री मा यन्ज़िलु मिनस्समाई वमिन शर्री मा यारुजु फीहा वमिन शर्री मा ज़रअ फिल अर्दी वमिन शर्री मा यखरुजु मिन्हा वमिन शर्री फितनिल लैली वन्नहार वशर्री कुल्ली तारिकी इल्ला तारिकी यत्रुक यत्रुकु बिखैरी या रहमान। मैं अल्लाह ताला के इन मुकम्मल कलेमात की पनाह में आता हूँ जिनसे कोई नेक और कोई बद आगे नहीं गुजर सकता, इस चीज़ के शर से जिसे इसने पैदा फरमाया और फैलाया और वजूद अता किया, और इस चीज़ के शर से जो आसमानों से उतरती है, और उस चीज़ के शर से जो इस पर चढ़ती है, और इस चीज़ के शर से जिसे इसने ज़मीन में फैलाया, और उस चीज़ के शर से जो इससे निकलती है, और रात और दिन के फितनों के शर से, और रात के वक्त हर आने वाले के शर से, सिवाय इस रात को आने वाले के जो खैर के साथ आए, ए नहायत रहम करने वाले। शायद ही कभी आप में से किसी ने ये दुआ मांगी हो, लेकिन आप देखिए कि अल इस्तिज़कार किताब का नाम है और हदीस है 4036 और मुस्नद अहमद की जिल्द 3 में 419। अब इसमें बहुत कुछ है, अगर आप थोड़ा सा इस पे भी तदब्बुर कर लें तो मांगनी और याद करनी आसान होगी। पहले देखिए कि आउज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामातिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुम वला फाजिरुम मिन शर्री मा खलका व ज़रअ व बरअ। यहाँ पे एक बात पूरी होती है, यानी ऐसे लगता है कोई स्पेशल किस्म के जिन्नात और शयातीन हैं जिनसे इंसान अपनी जान छुड़ाना चाहता है। और शयातीन जो है मुख्तलिफ़ किस्मों से आते हैं, मुख्तलिफ़ काम हमारे इर्द गिर्द खराबियों के करते हैं, कुछ नमाज़ों में वसवसे डालते हैं, कुछ वुज़ू में वसवसा डालते हैं, और इसी तरह से मुख्तलिफ़ तरह से। अब ये जो है कि अल्लाह के तमाम कलेमात की पनाह में आता हूँ, इस पे हमने पीछे भी बात की थी कि अल्लाह के कलेमात की पनाह में आने से क्या मुराद है। जिनसे कोई नेक और बद आगे नहीं गुजर सकता, यानी किसी की नेकी या किसी का गुनाह उसको आगे नहीं कर सकता, शैतानों से बचा नहीं सकता जब तक कि अल्लाह ताला न चाहे। फिर आप देखिए कि व ज़रा व बरा व मिन शर्री मा यन्ज़िलु मिनस समाई, यानी उस चीज़ के शर से जिसको उसने पैदा फरमाया और फैला दिया। अब जानते हैं मखलूक़ात मुख्तलिफ़ किस्म की है ना, कुछ ऐसे फैली हुई हैं चींटियों की तरह, टिड्डियों की तरह, आम चीज़ों के लिए लफ्ज़ पैदा आता है। और वजूद अता किया, यानी जिनको अल्लाह ताला ने एक वजूद दिया, कुछ चीज़ें वजूद के साथ है, कुछ नहीं है, कुछ हैवलाती चीज़ें हैं, कुछ सिर्फ़ एक वहमी चीज़ें भी होती हैं, तो हर उस चीज़ के शर से जो आसमानों से उतरती है और उसके शर से जो उसमें चढ़ती है, यानी ऊपर से उतरने वाले शर या नीचे से ऊपर चढ़ने वाले शर, सब से अल्लाह ने अपनी पनाह में रहना सिखा दिया। फिर जिसको ज़मीन में फैलाया और रात और दिन के फितनों से पनाह। आप देखिए रात और दिन के फितने कितने आम हैं ना, वमिन शर्रि फितानि लैलि वन नहर। रात के भी फितने अलग हैं, दिन के फितने अलग हैं, रात के फितने दिन से ज़्यादा हैं। इन सब से बचना है। सोचिए ज़रा, चोरियाँ रातों को होती, अमूमन ख़तरनाक मखलूकात बाहर आ जाती, जिन्नात रातों को होते, वीरानों में जा होते, और इसी तरह से वमिन शर्री कुल्ली तारिक। तारिक कहते हैं रात को आने वाला, सूरत तारिक भी है ना, एक सितारे को भी तारिक कहते थे क्योंकि ज़ाहिर सितारे तो रात को ही आते हैं, ये ज़रा सा चमकता हुआ था, इसलिए फरमाया वस्समाई व तारिक वमा अदरा कमत तारिक। अतारिक क्या है? अन्नजमु साकिब, चमकता हुआ सितारा। तो फरमाया कि रात को आने वाला शर, जो कौन सा शर है सिवाय इसके जो के खैर के साथ आए, इल्ला तारिकई यतरुकु। तुरक कहते हैं रास्ते को आना, रास्ते पे भी खैरिन खैर के साथ, यानी रात को जो तो खैर है वो तो ठीक है, जो शर है वो नहीं। आप यकीन करें इस दुआ को पढ़ें ना, तो अंधेरी रात, कभी जंगल, कभी सफ़र, कभी इंसान को किसी वीराने से गुजरना पड़ता है, इन दुआओं को मांग लीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर मखलूक से बचाएगा, जिन्नात भी होते हैं और पता नहीं क्या कुछ मखलूकात हैं। हमें तो इतना पता है कि ये दुआएं शऊर से मांग ली जाएं तो अल्लाह ताला फिर हमें इनके शर से बचाएगा। तो इसको थोड़े शऊर से रुक रुक के मांगिए, ताकि तवील दुआ जो है वो हमें कम अज़ कम समझ आ जाए, याद तो फिर बाद में भी हो जाएगी।
أعوذ بكلمات الله أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق ولا فاجر من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر فتن الليل والنهار وشر كل طارق إلا وشر كل طارق إلا إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار وشر كل طارق إلا وشر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.
انشاءاللہ جتنا زیادہ آپ ان لفظوں پہ غور کریں گے آہستہ آہستہ یاد ہوں گی. اگلی دعا دیکھیے گا، تدبیر الٹ جانے پر کی جانے والی دعا. یعنی آپ نے کچھ اور سوچا، اللہ نے کچھ اور کر دیا، اور اللہ کو حق ہے جو چاہے کرے. آپ کیا کریں، اللہ کے نبی کی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے، جبکہ دونوں میں اچھائی موجود ہے. جو چیز تمہیں فائدہ پہنچا سکتی اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، بے بس ہو کر نہ بیٹھو. اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو کاش میں اس طرح کر لیتا، بلکہ کہو، یہ ہے اس سوچ کے بعد بولنے والا جملہ، قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے مقدر فرمایا اور اس نے جو چاہا کیا. کیونکہ کاش کا لفظ شیطان کو دخل اندازی کا موقع دیتا ہے، یعنی پھر حسرت ہوگی، ریگریٹ ہوگا، افسوس ہوگی، کوئی ہاتھ ملے گا، کوئی پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا. تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2664، اور جو لفظ ہے نا قدر اللہ کو قدر اللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی حاذا قدر اللہ، حاذا قدر اللہ، یہی تقدیر الہی تھی. تب آپ کو کتنا اچھا جملہ مل گیا. سارا دن اگر آپ کی باتیں بدلتی رہیں، ٹوٹتے رہیں ارادے، کچھ اور ہو جائے، تو گھبرانے کی بات نہیں، بلکہ کہیے ما شاء فعل یا قدر اللہ ما شاء فعل. سکون کتنا ملتا ہے، ذرا سے اس کو دہراتے ہیں.
قدر الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل.
دیکھیے اس میں بھی تقدیر کا معاملہ ہے نا، قدر یقدر تقدیر، اسی سے ہوتا ہے. مراد ایک انسان اللہ کی لکھی ہوئی یا اللہ کی مقرر کردہ تقدیر پر خود کو راضی کر لیتا ہے، اور یہی ہے خوش رہنے کا راز. جتنا مرضی لڑیں، چیخیں، چلائیں، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، تو تقدیر سے جھگڑتے نہیں بلکہ اس کو مان لیتے ہیں. اسی طرح کے دیکھیے، پریشان آدمی اپنا حال کیسے بتائے، یعنی اگر کوئی ناپسندیدہ معاملہ پیش آ جاتا تو آپ فرماتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے 3803. تو ناپسندیدہ چیز تو الحمدللہ علی کل حال، ایک روایت میں سے آگے بھی آتا ہے واعوذ بک من حال اہل النار، लेकिन फिलहाल आप अभी इतनी ही दुआ दोहराइए जो हमारे रेफरेंस में है, दोहरा लीजिए इसको भी। अगर कोई कभी पूछ ही ले ना आपका हाल, तो आगे से दुखड़े ना सुनाएं और बीमारियां और जहाँ दर्द वहाँ दर्द, बस ये जुमला बोला करें, अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हाल। पूछने लगेगा फिर भी कुछ तो कहें, कहीं दर्द है, अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हाल। और सुनाएं कोई बात, लोग सुनना चाहते हैं आपके अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हाल। लोग कहेंगे जाओ फिर अपने हाल में खुद ही मगन रहो। मांगिएगा इस दुआ को।
अल्हम्दुलिल्लाही अला कुल्ली हाल, अल्हम्दुलिल्लाही अला कुल्ली हाल, अल्हम्दुलिल्लाही अला कुल्ली हाल।
दिल के साथ कहेंगे ना तो आपके दिल का हाल भी बदल जाएगा इंशाल्लाह। फिर इसके बाद क्या है कि जिस्म में तकलीफ़ महसूस होने पर क्या दुआ मांगी जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है, जिस्म के जिस हिस्से में तकलीफ़ हो इस पर अपना हाथ रखिए और 3 दफ़ा कहिए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह और बिस्मिल्लाह। फिर उसके बाद 7 दफ़ा आप कहेंगे आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्री मा अजीदु व उहाज़िर। मैं अल्लाह ताला और इसकी कुदरत की पनाह में आता हूँ इस चीज़ के शर से जो मैं महसूस करता हूँ और जिसका मुझे अंदेशा है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 5737। तो आप देखिए कि इसमें 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह, 7 दफ़ा आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्री मा अजीदु व उहाज़िरु। क्या पता चला कि अल्लाह की कुदरत की पनाह में आता है बंदा हर शर से जिसको महसूस करे। कभी कभी नज़र नहीं आता शर लेकिन महसूस हो जाता है, तो गोया के नज़र आने या ना आने वाले और महसूस होने वाले शर से भी अल्लाह की पनाह में आता हूँ, इसको भी मांगते हैं।
बिस्मिल्लाह, 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 अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्री मा अजिदु व उहाज़िर, अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्री मा अजिदु व उहाज़िर, أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر।
आप देखिए कि इसमें आउज़ु बिल्लाह का लफ्ज़ तो हम मानते ही हैं, पढ़ते भी हैं। कुदरती ही में कुदरत है यानी अल्लाह की कुदरत का एहसास है। फिर मिन शर्री मा अजीदू, अजीदू का लफ्ज़ वही है जिसको आप कहते हैं वजदा, वजूद पाना, विजदान, यानी जो मैं पाता हूँ महसूस करता हूँ। कभी कभी इंसान कुछ चीज़ों को फील करता है, ये उसके लिए आता है। फिर वह हाजिर हजर, हजर से हज़रुल मौत या हज़रून। तो गोया के कुछ लोगों को जो वसवसे आते हैं, जो अंदेशे आते हैं, जो उनको ऐसी राह जाती चीज़ें लगती हैं ना, उन सब से बचने का भी यही इलाज है। इसके बाद आज के सेशन की आखिरी दुआ, और वो क्या है, खुद को तो नहीं किसी दूसरे को कोई मुसीबत आ गई, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई गम, कोई अंदेशा, कोई वसवसा, कोई ऐसी चीज़ आ गई जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप डर जाते हैं कि अल्लाह तूने जो मुश्किल इसको दी या जिस तकलीफ़ में इसको डाला मुझे उससे बचा लेना, ठीक है। और ये एक नुस्खा है, एक श्योरिटी है, किसी को भी किसी मुसीबत, गम, तकलीफ़, झगड़ा, लड़ाई, जो भी माइन्यूट से कह लीजिए कि हर छोटी बड़ी चीज़ पे ये दुआ मांग ले। ये भी कसरत से मांगी जाने वाली दुआ है, क्योंकि हर वक्त हमारे इर्द गिर्द नागवार हालात हो ही रहे होते हैं। कभी कोई लड़ रहा है, कोई चीख रहा है, कोई कमी का शिकार, कोई अपनी चोरी का जिक्र करता है, कोई बीमारी का करता है, तो क्या मांगेंगे दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम मब्तिला कभी ही वफद्दलनी अला कसीरिम ممن خلق تفضيلا، ہر قسم کی تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے اس چیز سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا ہے، اور مجھے اپنی مخلوق میں سے بہت ساروں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کی زبان سے یہ جو دعائیں نکلتی ہیں نا، یہ واقعی نصیب بدل دیتی ہیں۔ اور یہ جو دعا ہے، یہ ترمذی کی 3431 نمبر کی دعا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بیمار کا حال پوچھنا، اس کو دیکھنے جانا یا اس کی مدد کرنا بذات خود آپ کو ان تکلیفوں سے دور کر دے گا۔ جس کو بیماری میں دیکھا، کسی کا کرونا پازیٹیو آ گیا، کسی کی چوری ہو گئی، فوراً مانگ لیجئے یہ دعا، شعور کے ساتھ مانگتے ہیں۔
جی ان شاء اللہ۔ الحمد للہ الذی عافانی، الحمد للہ الذی عافانی، مما ابتلاک به وفضلنی، مما ابتلاک به وفضلنی، وفضلنی علی کثیر خلق تفضيلا، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا۔
جی، آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی بہت ہی اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین کی ایک دلیل ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اس پہ کوئی تکلیف آئی تو اللہ کا حکم، میرے پہ آئے گی تو اللہ کا حکم، اس کی ٹلے گی یا میری ٹلے گی اللہ کے حکم سے۔ تو غیر شعوری طور پہ یہ دعائیں ہمیں روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کا قرب دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں اور امیدیں ہیں کہ وہ ہمارا رخ بدل دے۔ دعاؤں کے ذریعے ہی ہم توحید پختہ کر لیں، دعاؤں کے ذریعے قرب اللہ کے راستے کھلتے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تجوید کی اور ہر طرح کی غلطیوں اور کمی بیشیوں سے بچاتے ہوئے ان دعاؤں کو صبح و شام مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ جزاکم اللہ خیر، پھر یہاں پہ رک جاتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔